يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ راہ راست ہرگز نہیں دکھاتا. آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لے آئے، تو پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح سے شرمندہ ہو جائیں گے اور ایمان والے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے. یہ تھی آیت نمبر 51 سے 53. ان کے دو ٹاپک ہیں. پہلا ٹاپک ہے دوہری وفاداری، یعنی ڈیول پرسنالٹیز، جو دو طرف اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا ٹاپک ہے اس کا، دنیا کا ہر امتحان ارادے کا امتحان ہے. عرب میں مسلمان ایک نئی طاقت کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے مخالفین جو تھے وہ دن رات اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کو اکھاڑ دیا جائے. دوسری طرف ملک کے جو یہودی اور عیسائی قبائل تھے ان کا حال کیا تھا کہ ملک کے اقتصادی وسائل پہ ان کا قبضہ تھا، یعنی اکانومی جو تھی اس دور میں یہود اور نصارہ کے ہاتھ میں تھی. ہر دور میں شاید یہی بات رہی. اب ہوتا کیا تھا کہ یہود جو کئی سالوں سے مدینہ کے اندر قدم جما چکے تھے، تو عرب والوں کے دلوں میں ان کی عظمت چھا چکی تھی. لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی اس طاقت کو بھی ہم اپنے ملک سے ختم کر سکتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ جب اسلام آیا تو مسلمانوں کی جماعت میں جو کمزور لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی جد و جہد میں اس طرح شریک ہوں کہ نہ تو یہود تو نصارہ ان کے دشمن بنے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا دین بھی اچھا رہے. یہ کشمکش جو تھی ان کو مطلب بہت مشکل میں ڈال دیتی کہ ہم کریں کیا، کون سا طریقہ ہے کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور یہ بڑی طاقتیں بھی ہم سے خوش رہیں. اور نتیجہ کیا ہوا کہ مستقبل میں پیش آنے والے ایک ایسے خطرے کو جس کا ابھی ظہور نہیں ہوا تھا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر وہ اس حال کے خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنے لگے. یعنی مستقبل کی فکر یہ تھی کہ کہیں یہ بڑی طاقتیں ہم سے ناراض ہو گئیں تو ہمارا کھانا پینا نہ بند کر لیں، ہماری ایٹ نہ بند ہو جائے، ہماری مدد نہ کریں. تو اس کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر آنے کے باوجود بھی ان لوگوں سے بگاڑتے نہیں تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ دوہری وفاداریاں جو تھی وہ وجود میں آئیں. ایک طرف وہ بے ضرر معاملات میں تو حق کو مان لیتے، جہاں کوئی نقصان نہ ہوتا وہاں کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور دوسری طرف جہاں دین پر عمل کرنے سے یہ بڑی طاقتوں کے ناراض ہونے کا خطرہ ہوتا تو اس وقت وہ کہتے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دھمکی دی کہ دیکھو تم تو ان کے اندر بھاگ بھاگ کے جا رہے ہو، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ تم ان سے عزت پالو گے، ان سے رزق پالو گے، تم ان سے مدد لے لو گے، لیکن سوچو کہ اللہ کی ذات تو اس سے بہت بڑی ہے. کسی انسان کی زندگی میں یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے کہ جب اسلام پر قائم رہنے کے بدلے میں اس کو کوئی قربانی دینی پڑے. ایسے وقت میں کسی کا اسلام کی تصدیق کرنا یا تردید کرنا اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم ایسے مسلمان بنے کہ ہر لمحے ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہو، اللہ کو ہم مدد کشا سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مدد دینے والا اور اسی سے اپنی ساری مجبوریوں کو پیش کرنے والا سمجھیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رعب بڑی طاقتوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس کے برعکس جو دوسروں کو ناراض نہ کریں اور اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دیں، پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ بڑی طاقتوں کا خوف ہر وقت رہتا ہے. دنیا کا ہر امتحان ارادے کا امتحان ہے. ہم ہر وقت خطروں میں، ہر ایک ایک لمحے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اٹھنے والا قدم اللہ کی طرف جا رہا ہے یا اللہ کے غیر کی طرف جا رہا ہے. جس کی نگاہ اللہ پر ہوگی اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو شخص دوسروں کی طرف دیکھے گا پھر اللہ ان کو اسی کے قابل کر دے گا. ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ بڑا غیرت رکھتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ سے مدد چاہتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، اور جب اللہ سے غیر سے چاہی جاتی ہے تو اللہ اسی کے بس پہ ڈال دیتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ دوسروں سے مانگنا ایسے ہی جیسے کسی کی قبر پہ جا کے وہاں بیٹے مانگے جائیں یا اولاد مانگی جائے یا وہاں مال مانگا جائے. ایسا نہیں ہے. اگر قبر پہ کھڑا ہوا ایک شخص کسی پیر کو کہہ رہا ہے یا پیر، یا غوث، یا مشکل کشا، یا دستگیر، نعوذ باللہ، یہ سارے لفظ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ بزرگوں سے کرتے ہیں، اگر یہ شرک ہے تو یاد رکھیے اپنے وقت کی بڑی طاقتوں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلانا یہ اس سے بھی بڑا شرک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا، بہت کوشش کی لوگوں کی مدد پوری ہو، ضروریات پوری ہوں، लेकिन इतना खुशसाली हुई कि भूख पे लोग आ गए। इन्होंने अपने वक्त के करीब उस वक्त की जो सुपर पावर थी अपने दौर में, यानी बड़ी नॉन मुस्लिम ताकत थी, उसको खत लिख दिया कि इस तरह हमारे मुल्क में कहत आया वह, आप हमारी कुछ मदद करें। अब ऐसे लोग तो खुशी खुशी इस बात को सुनते हैं, वो तो चाहते ही है कि बंदा मुसलमान जो है वो उनसे ही मांगता रहे, वो उनकी तो डोमिनेंस ही है, उनके अंदर एक किस्म का इससे एक बड़ाई का एहसास है। उस मुल्क के हुक्मरान ने इतना बड़ा काफिला भेजा कि कहते हैं कि एक ऊंट जो था उसके मुल्क में था और दूसरा मदीने में था, इतना फूड और ग्रेन आया। लेकिन क्या हुआ, चंद दिन गुजरे, खत्म, फिर वही भूख वही प्यास। इतने में एक सहाबी जो बदरी सहाबी थे, यानी अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ था, उनको ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सिर्फ ये कहा कि उमर को क्या हो गया, बस ये जुमला कहा। नाराजगी का इजहार था। सुबह उठे उस सहाबी ने अपना ख्वाब हजरत उमर को सुना दिया कि इस तरह अल्लाह के नबी आए और उन्होंने ये जुमला बोला। अब तो उमर को अपने ईमान की फिक्र पड़ गई कि अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में ये कहा। फौरन उलमा को बुलाया, मजलिसे शूरा मुकर्रर हुई कि सोचो मैंने क्या गलती की है। उन्होंने जब सोचा, देखा, उन्होंने कहा उमर आपसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि आपने बारिश के लिए सलातुल इस्तस्का तो पढ़ी नहीं, आपने अल्लाह से तो बारिश मांगी नहीं और एक गैर मुस्लिम की मदद तलब कर ली। अल्लाह को इस पे गैरत आई, कहा वाकई मुझसे यही गलती हुई, चलो सब बाहर खुले मैदानों में निकलो और बारिश की दुआ करो। कहते हैं बाहर गए और सब ने सलातुल इस्तस्का पढ़ी, इस जलथल की बारिश हुई कि चंद दिन में वो कहत दूर हो गया। उमर से गलती हो, अल्लाह बदरी सहाबी के जरिए से उसको बता दे, आज के मुसलमान से ये गलती बार बार होती है। आज क्यों मुसलमान भूखा है, आज मुसलमान के पास क्यों खाने को नहीं, आज मुसलमान क्यों परेशान है, इसलिए कि उसकी निगाहें अल्लाह की बजाय लोगों से लगी हुई है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, जो बंदा अल्लाह से लग जाता है अल्लाह ताला उसको दूसरों से बेगाना कर देता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अल्लाह को बड़ी गैरत आती है जब अल्लाह के सिवा गैर से मांगा जाए। मैं इसको इस तरह समझती हूँ कि जैसे आप खवातीन हैं, आपके बच्चे होंगे माशाल्लाह, आप अपने बच्चे को एक खास चीज देते हैं एक नहीं देते, कभी आप देते हैं कभी नहीं देते, आपको पता है। एक खास आपने उनका पॉकेट मनी रखा हुआ है, बच्चा वही लेगा। बिलफर्ज आपका बच्चा आपसे कोई ऐसी चीज मांगे जो आपने उसको नहीं देनी, और वो आपकी दोस्त जो आपके घर में मिलने आई थी उसे आंटी प्लीज $1 दे दें, मैंने आइसक्रीम खानी है, आपको कैसा लगेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी ना। बाद में बच्चे को डांटेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आती थी, तुमने मेरी दोस्त के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। वो ये सोचेगी कि इसकी माँ इसको नहीं दे रही। चले यहाँ तो दोस्त का मामला है ना, ठग सकता है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसी औरत से या ऐसे मर्द से मांग ले जिससे आपका शरीक है, जो हर वक्त इस स्टो में है कि वो आपको मशहूर कर सके कि आप बड़ी कंजूस हैं और आप ऐसी हैं और वैसी हैं, जरा सोचिए जब आपके किसी शरीक से मांग ले तो मेरे वाले आप बच्चे को जूते से पीटेंगे कि तुम मुझसे मांग लेते लेकिन तुमने मुझे क्यों शर्मिंदा कराया। जब हम अल्लाह के सिवा गैर से मांगते हैं, अल्लाह को भी इस बात पे गैरत आती है कि मुसलमान हो तो मुझसे मांग लो, तुम क्यों शर्माते हो, तुम्हारा मेरे से क्या ताल्लुक नहीं है। बात यह कि ताल्लुक के तार तो हमने खुद तोड़े हुए हैं और गलती ये खाते हैं कि अल्लाह ताला ने सारी जो अपनी वसाइल और अपनी सारी चीजें वो गैरों को दी, उनको भी को अल्लाह ने प्लेट में डाल के नहीं दी हुई, वो मेहनत करते हैं, अल्लाह ने उनको समझ दी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को फैलाते हैं, उसके जरिए काम करते हैं। आज हमारी जमीनों में न जाने कितना सोना है लेकिन वो हाथ ही नहीं है जो जमीन को खोदे। आज हमारी जमीनों में कितने खजाने छपे होंगे, हमें मेहनत की आदत नहीं। हम चाहते हम सोएं और मूवीज देखें और हम शादियों को इस तरह धूमधाम से मनाएं, एक शादी हमारी 1 हफ्ते और 10 दिन क्या 1 महीने पे चली जाए। हम चाहते हैं हम सारा वक्त अपना घर बनाने में लगा दें और अल्लाह ताला की मदद आ जाए। उलामा इकबाल का एक शेर भी है ना, उसका मिसरा कि रहमतें हैं तेरी अखियार के काशानों पे, बिजली गिरती है तो मुसलमानों के आशियानों पे। वो कहते हैं अल्लाह ये क्या है, गैरों पे तो तेरी इतनी रहमतें हैं और जो बिजली गिरती है जो मुश्किल आती है वो मुसलमानों पे आती है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला जैसे हमारा है वैसे वो काफिर का। दुनिया में मोमिन और काफिर के साथ अल्लाह का मामला रब और बंदे का है। दुनिया में जो करेगा वो पाएगा, मन जद्दा वजदा। असल आखिरत जो है वो जन्नत जहन्नम, उसका ईमान और कुफर पे इन्हिसार है। दुनिया में ये नहीं है कि काफिर मेहनत करे तो उसको कुछ ना मिले और मुसलमान मेहनत करे तो उसको मिल जाए, या काफिर मेहनत करे और उसको कुछ ना मिले और मुसलमान मेहनत ना करे और उसको मिल जाए, ये झूठ होगा। ये दुनिया इंसाफ पे कायम है। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह को अपने हर बंदे से इतनी मोहब्बत है जितनी 70 माओं को अपने बच्चे से हो सकती है। उसमें काफिर भी है मोमिन भी है। अल्लाह ने कुरान पाक में कई मौके पे काफिरों के हक में आयतें की हैं कि अगर तुम दर्द खींचते हो तो ये भी दर्द खींचते हैं। आज तुम्हारे 70 मारे गए तो कल इनके 70 साथ कैद भी हुए थे। तो पता चला कि दुनिया में लोगों के साथ अल्लाह का मामला इंसाफ वाला है। हम तो कुफर और इस्लाम की बुनियाद पे किसी को झूठा सच्चा कहते हैं, अल्लाह नहीं कहते। सच्चा मुसलमान है तो वो फिर सच्चा है, काफिर सच बोल रहा है तो वो काफिर सच्चा है, और यही हमारे नबी की तालीमात थी। लेकिन बाद वालों ने अपने आप को कुछ ऐसी खुशफहमियों में डाला, हमने सोचा बस हम मुसलमान है इसलिए अल्लाह की मदद आनी चाहिए। तो याद रखिए कि अल्लाह का वादा नहीं है, काम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, और अगर हाथ तोड़ के बैठ जाएंगे तो वो जो रही सूही चीजें दुनिया में अब हमें मुसलमानों के हाथों में दिखती हैं वो भी चली जाएंगी। आगे इन्हीं आयतों का तज़किरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहू। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो अल्लाह से भी मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफार पर। अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी न करेंगे। ये है अल्लाह का फजल जिसे चाहे दे। अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और जबरदस्त इल्म वाला है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं। कौन से ईमान वाले? अल्लज़ीन युकीमून सला, वो लोग जो नमाजों की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो रुकू और खुशी व खुजू करने वाले हैं। जो शख्स अल्लाह से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे, यकीन माने कि अल्लाह ताला की जमात ही गालिब रहेगी। आयत नंबर 54 से 56। इन आयतों का पहला टॉपिक क्या है कि तुम अल्लाह की ज़रूरत नहीं हो। कोई ये खुशफहमी में ना रहे कि अल्लाह को शायद हमारी जरूरत है। दूसरा टॉपिक है कि अल्लाह का गिरोह ही गालिब होगा। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक ऐसी हकीकत खोल दी कि जिसकी अमली तस्वीर आज दुनिया में हमको दिखती है। अल्लाह ईमान वालों को मुखातिब करके कहते हैं कि लोगों, अगर तुम ईमान लाने के बाद अपने दीन से फिर जाओगे तो फिर अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं, अल्लाह किसी ऐसे को ले आएगा जो तुमसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। सवाल पैदा होता है कि ईमान लाने के बाद ईमान से फिरना क्या है? क्या किसी जगह खड़े होकर यह कहना कि मैं इस्लाम को छोड़ता हूँ? क्या किसी काफिरों की जमात में शामिल होने का इकरार करना इर्तदाद है? तो ऐसा नहीं, बल्कि ईमान लाने के बाद जो ईमान के तकाजे पूरे न करे, अल्लाह की नजर में दीन को कबूल करने के बाद दीन से फिरने वाला है, ऐसे लोग अल्लाह की नजर में खसो खाशाक की कीमत रखते हैं। जो शख्स ईमान लाए और उसके तकाजे पूरे करे, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करे, जिनको इस्लाम के मकासद अपने जाती मकासद से ज्यादा प्यारे लगे, जो इस्लाम के रास्ते में आने वाली तकलीफों को अपने लिए एक एजाज समझे, जिनके दिल ईमान वालों के लिए नरम हो और हमदर्दी के सिवा दूसरी कोई चीज उनके दिलों में मुसलमानों के लिए ना हो, वो इतने शफीक और रहीम बन जाए मोमिनों के हक में कि उनकी खामियों पर भी नजर न डालें और उनकी खूबियों को उछालने वाले हों, और ऐसे वो लोग हों कि जिनको इस्लाम के नज़रियात इतने अजीज हों कि किसी गैर इस्लामी नजरिए को अपनी जिंदगी में जगह न दे सकें। वो लोग इतने ज्यादा असूलों के ताबे हो जाएं कि वो मुसलमानों के साथ तो फूल साबित हों और काफिरों के साथ वो पत्थर बन जाएं। और ऐसे लोग जो अल्लाह के दीन से इतनी मोहब्बत करने वाले हों कि हर वो सोच या इज्म जो अल्लाह के दीन से हटाने वाला हो उसके साथ उनको कोई भी मैल ना हो, वो उनके अकायद को कबूल ना करें, उनके तौर तरीके उनको अच्छे ना लगें, उनके रस्म रिवाज उनको अच्छे ना लगें, अल्लाह ऐसे लोगों को मुसलमान लोग कहता है। इसके बरक्स अगर कोई गिरोह वजूद में आ जाए, वो अपने नाम को जो मर्जी कहे, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने रजिस्टरों में मुसलमान के नाम से हटा देते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये एक चैलेंज है। आज अगर देखा जाए कितनी तेजी से कन्वर्शन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि दुनिया में इस वक्त उनके जरिए से सबसे फास्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। आज भी आप इंटरनेट को खोल के देखें तो आपको ऐसे फिगर्स मिलेंगे कि सबसे तेजी से इस्लाम फैल रहा है, यूरोप में इस्लाम फैल रहा है, अमेरिका में इस्लाम फैल रहा है। क्यों? अपनी हक्कानियत की वजह से, सच्चाई की वजह से। और याद रखिएगा कि इस्लाम के फैलने में बहुत बड़ी वजह मुसलमान नहीं है, बल्कि इस्लाम के वो सच्चे असूल हैं, इस्लाम की वो खूबसूरत तालीमात है जिसमें आज की तरसती हुई और सिसकती हुई इंसानियत को अपने मसाइल का हल मिल रहा है। लोगों ने सारे तजुर्बे कर लिए, अब वो इस्लाम को अपने लिए एक बेहतरीन लाहे अमल बनाते हैं। आज जो पैदाइशी मुसलमान है वो सो रहे हैं, आज पैदाइशी मुसलमान अपनी ज़ात को बना रहे हैं, और वो लोग जो तेजी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं वो इस्लाम को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाते हैं। वो लोग दलील के साथ इस्लाम को ला रहे हैं। अब देखिए, जो नया शख्स मुसलमान होता है वो पहले दीन सीखता है, पढ़ने जाता है, पढ़ाता है, फिर उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि लोगों को उस इस्लाम की तरफ बुलाए। आज जितनी दावा एक्टिविटीज हैं उसमें 80% जो वो कन्वर्टर्स कर रहे हैं। आज हमारे अच्छे स्पीकर्स देख लीजिए, इंग्लिश स्पीकर जितने, उसमें 80-90% नॉन मुस्लिम्स हैं। वजह क्या है? कि उन्होंने उस दर्द को सहा, वो उस मुश्किल से निकले, उनको मुश्किलों से दीन मिला, उन्होंने कुर्बानियां दी, उन्होंने अपनों को छोड़ा, उनके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे, उनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगी। और जितनी इस्लाम के नाम पे पाबंदियां लगती हैं उतना इस्लाम का जज्बा, इस्लाम की शम्मा उतनी फैलने लगती है। आज उन लोगों के इस्लाम के आने की वजह से इस्लाम तो फैल रहा है, लेकिन हम बोन मुस्लिम्स के लिए ये एक लम्हे फिक्री है। क्या ये वही बात तो नहीं हो रही कि मैं यरतद मिनकुम अन दीनिही, जो अल्लाह के दीन से फिरता फिर जाए अल्लाह को उसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे करेगा। देखिए कि आज कुफर को आप नॉन मुस्लिम मुल्कों से फैलता हुआ देखते हैं, आज गंदगी को फैलाया जाता है, आज आप देखिए शराब जो दुनिया की खलीज तरीन चीज़ होगी उसको बेहतरीन तरीके से एडवर्टाइज करके आम किया जा रहा है। आज गंदा मीडिया लोगों के जहनों पर रायस किया जा रहा है। एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब इनके पास वो इस्लाम आ जाएगा जो अपने प्रोडक्ट के एतबार से बेहतरीन है, इस्लाम जिसके अंदर इंसान की अकल और उसकी रूह के सारे तकाजे पूरे किए जाते हैं, तो वो कितने प्यारे अंदाज से पेश नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं मेरी? यानी कि गंदी चीज़ें आज वेस्टर्न कल्चर से कितनी ज्यादा फैली जा रही हैं। हालांकि इंसान की तबीयत उसको गंदा कहती है, फितरत उसको गंदा कहती है, लेकिन जब उन लोगों के पास दीन आएगा तो वो उस दीन को कितना प्यारा प्रमोट करेंगे। मैं तो सोचती हूँ कि वो दीन इस्लाम को सिर्फ साइंस के असूलों से लोगों को मनवा देंगे। वो तो अपनी साइंसी तरक्कियों को सामने ला के इस्लाम को पेश करेंगे कि देखो ये रिलीजन है, और अल्लाह फिर उनसे वो काम करवा लेगा जो आज हम नहीं कर पा रहे। हमारी आवाज़ तो एक कमरे में रुक के रह जाती है, उनकी आवाज़ें तो दुनिया के एक कोने से दूसरे पे जाती हैं। हम सबको अपने ऊपर गौर करना है। अल्लाह ताला मुसलमान को एक बामकसद ज़िंदगी देता है, ये जिद्दोजहद की ज़िंदगी है। मुसलमान का मिशन यह है कि वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक पहुँचाए, जहन्नुम में जाने वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्तों पर लेके आए, और इस रास्ते में अगर कोई मुश्किल आए, कोई मलामत हो, तो उस पर सब्र करे। यहाँ खास तौर पे लौमत लाइम की बात हुई। आज हम बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं इस्लाम के लिए, लेकिन जहाँ कोई हमें मलामत करने लगता है तो हम डर जाते हैं। ये नहीं हो सकता, ये बात बदलने लगे। ये कामयाबियों का और तारीफों का ग्राफ नीचे गिरने लगा है। नहीं भाई, बातें नहीं मैं सुन सकती। इस्लाम पे अमल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने शोहर की बात नहीं सुन सकती, मैं अपने खानदान को नाराज नहीं कर सकती। अल्लाह ने खास तौर पर उस गिरोह की बात करी कि जो किसी से नहीं डरते, इसलिए कि जब आप किसी एक से मोहब्बत करेंगे ना तो बहुत सारे लोग आपको बुरा जरूर कहेंगे। मैं इसको इस तरह समझती हूँ कि एक लड़की, अगर आप देखें कि माँ बाप ने जो उसको दिया होता है उसका हक अदा करना चाहे तो नहीं कर सकती, लेकिन जब उसको एक गैर शख्स से मोहब्बत होती है तो वो सारी कुर्बानियों को और सारी मोहब्बतों को पसे पुश डाल के वो उस मर्द के लिए अपने माँ बाप के सामने खड़ी हो जाती। वो तो उस वक्त किसी लौमत लाइम से नहीं डरती कि माँ बाप क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। उसको माँ बाप की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता, सिर्फ एक शख्स है उसके सामने। हो सकता है वो अकल में उससे भी कितना कम हो, उसके पास कुछ भी रंग ढंग ना हो, लेकिन जज्बात गालिब आए तो माँ बाप के आगे खड़े हो गए। एक बातिल मोहब्बत किसी के दिल में आए तो इंसान इस तरह बेनियाज हो, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत आए, जिसको अल्लाह इतना करीब से नजर आने लगे, क्या फिर वो लोगों की बातों से डरेगा? तो असल बात यह कि हमें अल्लाह की मार्फत नहीं आई, हमने उसकी कदर नहीं जानी, हमने इस दीन इस्लाम की वो खूबी नहीं जानी जिस खूबी को अल्लाह ताला हमारे अंदर प्रमोट करना चाहता है। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में चलने वाला और बातों से बेनियाज होकर इस सफर पे आगे से आगे बढ़ने वाला बना दे। जब ऐसे लोग दुनिया में आएंगे अल्लाह इनको गालिब कर देता है। उम्र फारूक को जो 10 साल मिले थे जिसमें इस्लाम कहाँ से कहाँ फैल गया, वजह क्या थी कि ला तखाफून लौमत लाइम। आज मुसलमान के अंदर खूबियां बहुत हैं, लेकिन ये बात आ गई कि वो अल्लाह के लिए बातें नहीं सुन सकते। ऐसे लोग अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, दोबारा इंशाअल्लाह ताला मुसलमान उम्मत उभर सकती है, और वो दिन दूर नहीं कि ऐसा होगा। सिर्फ बात यह कि हम इसके अंदर अपना कितना हिस्सा डालते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन वलाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम। मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं, ख्वाह वो इनमें से हो जो तुम में से पहले किताब दिए गए या कुफार हो। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो उसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, और इस वास्ते से कि वो बेअकल हैं। आप कह दीजिए कि यहूदियों और नसरानियों, तुम हमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनियां कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया और जो कुछ इससे पहले उतारा गया इस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में से अक्सर फासिक हैं। कह दीजिए, क्या मैं तुम्हें बताऊं उनसे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की और वो इस पर गुस्से हुआ, और इनमें से बास को बंदर और सुअर बना दिया, और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास्त से ज्यादा भटकने वाले हैं। ये थी आयत नंबर 57 से 60, 57 से 60। इनका उनवान है दीन का मजाक उड़ाने वालों से। ताल्लुक तबलीग का तो हो सकता है, यानी हम उनको तबलीग करना चाहते हैं इस हद तक तो ताल्लुक रखा जाएगा, मगर दोस्ती का नहीं। कुछ लोग होते हैं जो दीन पे अमल नहीं करते, वो इतने खतरनाक नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हैं जो दीन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसे लोग एक खतरनाक जर्म की तरह और एक ऐसे जरासीम की तरह खतरनाक हो जाते हैं कि जो बीमारी को बढ़ाने वाला बन जाता है। अल्लाह ताला का दीन जब भी फैलता है तो वो लोग जिनके अकायद और तौर तरीकों पर उसकी जद पड़ती है वो इस्लाम का मजाक उड़ाने लगते हैं। बनी इसराइल यानी यहूद जो मदीना में थे, उनका हाल यही था। अल्लाह के नबी मदीना में आए तो उनको महसूस हुआ कि आपकी दावत तो हमारे सारे ढांचे को गिराने वाली है। हमने तो लोगों को अपना गुलाम बना रखा है, ये तो अल्लाह की गुलामी में ले जाने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ कि जब अजान फर्ज हुई तो जब सहाबाए कराम के जरिए से अजान के कलमात बुलंद हुए तो इन लोगों ने अजान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। याद रखिए कि इस कौम का एक कल्चर है और वो क्या है कि मजाक उड़ाना, फन, पेरोडी, नकलें उतारना। कल भी था, आज भी था। इन्होंने अजान का मजाक उड़ाया। नतीजा क्या हुआ कि जब इनकी जुबानों से इस्लाम के इस एक रिचुअल का मजाक उड़ता देखा गया तो अल्लाह ताला ने इनायात में मुसलमानों को एक पैगाम दिया। कैसे लोग जो बरमला और सरेआम तुम्हारे इस्लाम का मजाक उड़ाए, उनसे सिर्फ तुम्हारा एक ही ताल्लुक है और वो दावत का है, वो तबलीग का है। तुम इनको इस्लाम की दावत दे सको तो इनसे ताल्लुक है, वो किसी भी तरीके से हो, इसके अलावा आप तुम इनसे दोस्तियां नहीं रख सकते। हमारा तो शायद इतना इंटरेक्शन नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ की नस्लें, यहाँ के बच्चे जब ऐसे नॉन मुस्लिम्स के साथ उठते बैठते हैं जो इस्लाम के बारे में जहर उगलते हैं, तो याद रखिए कि उनके मासूम जहन भी इससे मुतासिर होने लगते हैं। माँ बाप का ये बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के दोस्तों को देखें, उनकी दोस्तियों के मेयार को देखें। कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम है बेचारे जिनको अपना भी दीन नहीं पता, वो हमारे जैसे हैं। जैसे हमारे बच्चों को इस्लाम नहीं पता, उनको क्रिश्चियनिटी नहीं पता। वो इतने खतरनाक नहीं है, बल्कि वो लोग जो अपने दीन के अंदर बड़े मजबूत हैं, उनके साथ मामला जो है इंसान को रखना चाहिए। बहुत एक नपातुला मामला हो, ताल्लुक तोड़ने से इस्लाम मना नहीं करता, उनके खिलाफ बातें करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अपने आप को बचा के रखना है। बस आप देखिए कि कहीं कोई वायरस फैल जाए तो क्या हम अपने आप को उससे बचाने की कोशिश नहीं करते? हम अपने बच्चों को बचाएंगे ना कि वो उस वायरस का शिकार ना हो। इसी तरह सबसे बदतर वायरस जो होता है वो तो शैतान के फैलाए हुए बुरे अकायद हैं, नजरियात हैं। आज के दौर में भी ये काम मौजूद है। आप मत सोचें कि आज लोग बहुत ज्यादा लिबरल हो गए और मजहब की आजादी है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने वाकई ऐसे मौके रखे हुए हैं कि बड़े अमन और सुकून से मुसलमान अपने दीन का काम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी ऐसी कोशिशें मौजूद हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त भी यानी ऐसी मूवीज मौजूद हैं कि उन्होंने, यानी एक मूवी का एक हल्का सा आपको यानी हिंट दे दूंगी कि सूरत नूर के खिलाफ एक वेस्टर्न कल्चर में एक मूवी बनी है। उन्होंने पूरी बरहना औरत दिखाई हुई है और उसकी बैग के ऊपर सूरत नूर की आयतें लिखी हुई हैं। आज भी मेरे पास ऐसे ईमेल्स आते हैं कि जूते बने हुए और जूते के ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। आज भी ऐसी बेहुदा किस्म की चीजें आपको मिल जाती हैं कि बिल्कुल नीम नेकेड औरतें जो हैं और उनको नमाज पढ़ते हुए दिखाया जाता है। ये सब क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इनके दिल का बुग़्ज़ है। मत सोचिए कि ये चीजें वो नहीं कर रहे, अकेले में वो गुस्से से उंगलियां काटते हैं। हम उनको बुरा नहीं कहेंगे, ऐसा तो बहुत दफा होता रहा, मुसलमा कज़ाब ने भी किया और यहूद ने भी किया। हमारा काम क्या है कि अपने दीन को फैलाएं, अपने नजरियात को आम करें। हम किसी को बुरा कहते थे, बुरा कहते थे, लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। आप उनके हाथों में कोई अच्छी चीज दे दें। हम अपने बच्चों को कैसे रोकें इन चीजों से जब उनको एक बामकसद चीज देंगे? याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अकल रखी है और इंसान को ख्वाहिशों के पीछे चलने से जो चीज रोकती है वो अकल है। लेकिन जब इंसान उस अकल के ऊपर पर्दे डाल देता है ना, कहीं दुनिया की परस्तिश के, कहीं जिद के, कहीं अदावत के, तो उसकी अकल जो है वो ख्वाहिश के नीचे दब जाती है और बाजाहर में वो इंसान लगता है लेकिन अंदर से वो हैवान बन चुका होता है। अगर हम ख्वाहिशों वाली दुनिया में रहेंगे तो फिर इंसानी सतह से गिर के हैवानी पे आ जाएंगे। जरूरत है इस बात की कि इंसान अपने आप को पहचाने कि इंसान के जाहरी ढांचे के अंदर क्या छुपा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इन तमाम चीजों से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाएं तो अपने बच्चों के जहनों को बड़ा करना पड़ेगा। और जहन की वसत होती ही अल्लाह के कलाम से। किसी को गलत कहने, हा हू फैलाने, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी इजाजत नहीं है। फायदे के बजाय नुकसान होगा। आप जितना किसी चीज से रोकेंगे इंसान की तबीयत है वो उधर देखेगा। आप कहते हैं ये सब चीजें खोल लो, ये दराज ना खोलना, आप जरूर कहेंगे इसमें कोई बात है। हम जब बच्चों के ऊपर ऐसी गलत किस्म की पाबंदियां लगाते हैं ना, खबरदार अगर तुमने फलां वेबसाइट खोली, ओके का अच्छा है कि मैं इसको खोलूंगा, नहीं। आप उनके अंदर उनकी अकल को इतना मजबूत कर दें कि वो गलत चीज की तरफ देखने की कोशिश भी ना करें। एक ही बात है, अल्लाह के कलाम से जोड़ दें। यकीन करें यही वो एक रास्ता है जिसमें हमारी फलाह है और जिसमें हमारी नस्लों की फलाह है। एक दफा खुद दीन को सीख लें और उसके बाद फिर लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। इसी से इंशाल्लाह मुआशरे के अंदर से गंदगियां जो हैं वो दूर होंगी। वइज़ा जाऊकुम क़ालू आमन्ना वक़द दखलू बिल्कुफ्री वहुम क़द खरजू बिही। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए थे और इसी कुफर के साथ भी गए हैं, और जो कुछ वो छुपा रहे हैं इसे अल्लाह ताला खूब जानता है। आप देखेंगे इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म और ज्यादती की तरफ और माले हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वो निहायत ही बुरे काम है। इन्हें इनके आबिद और आलिम झूठ की बात कहने और हराम खाने से रोकते क्यों नहीं? बेशक ये बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। ये थी आयत नंबर 61 से 63। इनका उनवान है अवाम पसंद दीन बमुकाबला खुदा पसंद दीन। ان آیتوں پہ براہ راست مذہبی طبقے پر تنقید ہے۔ علماء یہود کے اندر ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ لوگ آپس میں گروہ بندیوں کی وجہ سے اتنے زیادہ جھگڑنے لگے کہ ان کو اس بات کی فکر ہی نہ رہی کہ لوگ کس گناہ کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اس بات پہ تو بہت بات کرتے تھے کہ یہودہ قوم اچھی ہے یا بنجامین سے نسل سے جو تعلق رکھنے والے ہیں وہ کون ہے، یا پھر بولوں گی کہ ان کے یہ جو 12 فرقے بنے تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے نسبت پہ بنے تھے۔ یہودی لفظ جو ہے یہ یہودہ جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کی نسبت کی طرف جو سیکٹ ہے اس کی طرح۔ اسی طرح ان کے اندر اور بھی بڑے فرقے تھے جن کو 12 قبیلوں کے نام سے ہم پیچھے جان چکے ہیں۔ تو ان کے اندر ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگوں کو اس قسم کی چیزوں میں الجھا دیتے کہ جس کی وجہ سے ایک فرقے اور ایک قبیلے کے اوپر دوسرے قبیلے کی بڑھوتری تو ثابت ہو لیکن جو لوگوں کے اندر برائی تھی اس پہ تنقید نہیں کرتے تھے۔ ان کا فوکس کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے قبیلے میں شامل ہوں۔ جن لوگوں کا یہ فوکس ہو جائے گا نا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں تو اس کا ایک لامحالہ نتیجہ ضرور نکلے گا کہ وہ لوگوں کو ان کی پسند کا دین دیں گے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑیں۔ آج ایسی آوازیں مسلمانوں میں بھی آپ کو دکھیں گی، وہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے، نام لے کے بولے جاتے ہیں۔ یعنی بعض چینلز یا بعض ایسے میڈیمز ہیں وہ کہتے ہیں ہر بندہ آئے اور اپنا فن پیش کرے۔ آئیے آپ بھی پیش کیجئے، آپ بھی کریں۔ کیوں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو زیادہ لوگ دیکھیں۔ چلیے یہ بھی معیار آپ نے بنا لیا، ایک آئے گا وہ شیعہزم کی بات کرے گا، دوسرا آئے گا وہابیزم کی بات کرے گا، تیسرا آئے گا وہ وہاں سے سنیزم پھیلائے گا، تیسرا بریلویزم پھیلائے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کے نام پہ ایک چینل کھول کے سب کو موقع دیا؟ یہ تو ایسے ہی کہ آپ نے ایک اسٹیج بنا دی اور ہر بندہ آ کے اس پہ اپنا شو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں، ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو حکومت میں آئیں گے، ہم سب کو بلائیں گے، ہاں ایوری باڈی از ویلکم ویلکم ویلکم، کیا کہ تم ہمیں ووٹ دو، ہم تمہارے نظروں میں بڑے ہوں۔ اگر اللہ کے نبی ایسا دین پیش کرتے تو یقین کریے کہ بدر کے موقع پہ جو 313 تھے نا وہ 313 ہو سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہر جنگ میں کافروں سے 3 گنا کم لوگ دکھتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ نے خدا پسند دین لوگوں کو دیا، عوام پسند نہیں دیا؟ آپ اپنے بچوں سے پوچھ کے اگر اپنے گھر کے معاملے چلائیں تو ذرا سوچئے کہ ایک مہینے میں کیا ہو جائے گا گھر کا حال۔ کبھی آپ کے گھر دال ساگ پکے گا؟ آپ کے بچے آپ کو روز کہیں گے میکڈونلڈ چلے؟ آپ بتائیے کہ اگر آپ اپنے بچوں سے پوچھ کے ایک مہینہ آپ ازما لیں، صرف ایک ہفتہ چلے ازما لیں، جائیے آج سے کہیں بچوں تم جو کہو گے وہ ہوگا گھر میں، یقین کریں ایک ہفتے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں، ان کو عقل نہیں۔ یہی حال عوام کا اور علماء کا ہوتا ہے، عوام بچوں کی طرح ہوتے ہیں، مچل پڑتا ہے ہر چیز پہ، مچل پڑتا ہے۔ اسی طرح جو عام لوگ ہوتے ہیں جو علم سے دور ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، جب علم والے لوگوں کو اس طرح ٹیکل نہیں کرتے جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹیکل کرتے ہیں، ہم ان کو آرگنائز کرتے ہیں، ہم ان کو سمجھ دلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، دس از پارٹ آف لائف، تمہیں کرنا پڑے گا، ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، مانو۔ اسی طرح علم والوں کا یہ فرض ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں سے منوائے۔ جب لوگ یہ نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہے کہ ایسے لوگ پھر دنیا میں برائیوں کو پھیلانے کے سبب بنتے ہیں۔ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، آپ صرف ایک ہفتے کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، چلے مذہبی ایڈیشن اٹھا لیں، آپ علم والوں کی آپس کی بحث مناظروں کو اٹھا لیں، لوگوں کو آج اس بات کی بہت فکر ہے کہ لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اوپر رکھتے ہیں کہ نیچے، لوگ سجدہ اونچا کرتے ہیں کہ نیچا، لیکن اس پہ بہت کم بات ہوگی کہ لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ اور شیطان کا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ علم والوں کو آپس میں اس طرح سے الجھا دیتا ہے کہ آپس میں لڑتے مرتے رہے اور عوام کو کھلا چھوڑ دو، ان کی برائیوں پہ نہ چھوڑو۔ جیسے مشہور ہے ہمارے ہاں کہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر تھوڑے دن بعد ایک نیا شوشہ چھوڑیں گے تاکہ لوگ اسی کے اوپر پڑے رہیں، جو سیاستدان ہیں ان کی کارستانیوں پہ تنقید نہ کر سکے۔ ایسے وقت میں انسان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو پسند کرے یا لوگوں کے دین کو۔ اللہ کے دین کو پسند کرنا تقویٰ کا دین ہے، اس چند دن کی دنیا کو اس طرح قبول کرنا جیسے رب چاہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کل وہ دنیا ویسی ہوگی جیسی ہم چاہیں گے۔ آج ہم اللہ کی مرضی پوچھ پوچھ کے جیئیں گے، کل اللہ تعالیٰ ہماری مرضی پوچھے گا۔ اس کے برعکس جب لوگ ایک ایسی خاموش مفاہمت کر لیں لوگوں کے ساتھ کہ ایسا دین پیش کرے کہ جس میں حقیقی زندگی کو بدلے بغیر نجات کی ضمانت ہو اور بڑے بڑے درجات ملنے کے وعدے ہوں، ایسے لوگ پھر وہ دین لوگوں کو پیش کر کے اپنی زندگی میں رہتے ہیں اور چند جھوٹی قصے کہانیوں اور ایسی روایتوں پہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب، یہ کرو گے تو جنت کتنے محل تیار ہوں گے، اور لوگ پھر ایسے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آسانی سے ایک چیز مل جائے تو مشکل سے کون لے گا؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دین کا وہی ایڈیشن پیش کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے ہمارے تک پہنچا۔ دیکھیں یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، آپ پچھلے تقریباً 2-2.25 گھنٹے سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں اللہ کا کلام سامنے کھول کے بیٹھی ہوں۔ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ میں آپ کو پیچھے کسی اور طرف لے جاؤں، میری بات جو ہے وہ خدا نہ خواستہ میرے نفس کی بات بن جائے، میں کسی ایک خاص مسلک کی نمائندگی کرنے لگوں، میں کسی ایک خاص سکول آف تھاٹ کو آپ پہ مسلط کروں، تو کیا جو جرم میں نے کیا مجھے اس پہ کوئی چھوڑے گا؟ اللہ کا کلام سامنے رکھ کے جب ہم لوگوں کو دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی سزا ہے! اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لعنت کہتا ہے. اللہ نے اتنے کھلے عام سے بات کی کہ دیکھو ان کے علماء نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے کلام کی بجائے اپنی مرضی پیش کرنے لگتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عوام پھر ایسے دینداروں سے بھی ایک وقت کے بعد دور ہو جاتے ہیں. آج دیکھیے کہ جمعے کی نماز کھڑی ہونے سے پہلے تک 10% لوگ ہوتے ہیں مسجد میں. جو ہی خطبہ ختم ہوتا ہے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور جلدی سے جھٹ سے ایک فرض تالا اور بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں نہیں کسی مولوی کی نہ سنو، یہ بہت غلط کہتے ہیں، یہ ہر ایک کو غلط کہتے ہیں. لوگ ایک ریئیکشن کا شکار ہو گئے، وہ کہتے ہیں سنو ہی نہ. یہ نہیں کہتے حق سنو، جس کی ٹھیک ہے سنو. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ہم نے نہیں سننا. اور وہ شکر کرتے ہیں کہ یہ بولتے رہے لڑتے رہے اور ہم بھی آزاد رہے. اللہ تعالیٰ ایسے تمام ماحول کو بدلنے کے اندر ہم جو کر سکیں اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وکالت الیہود ید اللہ مخلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بن جائیں اور لعنت ہو ان کو اس کہنے پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے بغض اور عداوت ڈال دیا. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیوں کو دور کر دیتے اور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش والی ہے اور باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں. یہ تھی آیت نمبر 65 یعنی 65-66. اس کا عنوان لکھیے اللہ کے دین کو نافذ کرو، نعمتیں تم پر برسیں گی. دین کا نفاذ نعمتوں کے دروازوں کا کھلنا ہے. یہی قانون فرد کے لیے بھی ہے اور یہی قانون قوم کے لیے بھی ہے اور یہی کسی ملک کے لیے. جتنا انسان اللہ کے دین کو اپنی ذات پہ لاتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تصور کو توڑتا ہے. آج اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے پاس نعمتوں کے دروازے کھلیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑتے جائیں بلکہ اللہ کے دین کو پھیلاتے جائیں. اللہ کے نبی کے ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ کسی ایک زمین کے ٹکڑے پہ کسی حد کا نافذ ہونا. حد کیا ہوتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائے مقرر ہے، جیسے چوری کی یا قتل کی یا اس طرح کی چیزیں. کسی ایک حد کا نافذ ہونا اس ملک میں 40 دن کی بارش سے زیادہ خیر اور برکت لاتا ہے. آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ہم کئی دفعہ مالی بحران کا شکار محسوس کیے جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو اکانومی کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، آپ کی اکانومی ڈوب گئی، آپ کی گر گئی، دس اینڈ دیٹ. ہمیں کیا پتا ہماری زمینوں کے اندر کتنا خزانہ ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ہم اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر رہے. ایک سپیچ میں سنی تو کہنے لگے، میں سعودیہ میں تھا تو ایک بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا، ان کا نام لے کے کہنے لگا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ پاکستان میں تیل نکل آیا ہے، یعنی آئل وہاں سے برآمد ہوا ہے. تو کہ میں بڑا خوش ہوا، کیا کوئی خبریں سنی ہیں تم نے، کہاں پاکستان میں آئل نکلا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، ابھی میں نے خبریں سنی ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت کے حکمران ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم پاکستان میں اسلامک نفاذ کریں گے، یعنی اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے. تو اسلامی شریعت کو نافذ کرنا یہ ہے کہ اب دیکھیے گا پاکستان میں بھی اسی طرح آئل نکلے گا جیسے سعودیہ میں نکلا ہوا ہے. اب یہ بات تھی نا، لیکن سچ بات ہے، اگر ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ فیل کریں گے کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے برکت ہوگی اور آگے بھی آپ پڑھیں گے. نعمتیں آج کیوں رکی ہوئی ہیں؟ دیکھیے جو غیروں کو دے سکتا ہے وہ اپنوں کو نہیں دے گا. ذرا سوچیے، جو ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے کیا وہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ مسلمان کو بھی دے سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ تم اپنے دین کو نافذ کرو. لیکن جب اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی بجائے اپنی مرضی کا دین پیش کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آئی ہوئی نعمتوں کو بھی ان سے چھین لیتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 67، عنوان ہے تم پیغام پہنچاؤ، مخالفوں سے اللہ نبٹ لے گا. بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، ایسا نہیں تھا کہ وہاں لوگ دین کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ سارا معاشرہ ہی دین کے نام پر قائم تھا۔ بہت سارے لوگ دین کے نام پہ پیشوا اور قائد بنے بیٹھے تھے، لیکن ان کا دین لوگوں کی پسند کا دین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچا دین پیش کیا تو وہ آپ کے مخالف بن گئے۔ اس پہ نبی کے دل میں یہ گھٹن پیدا ہو سکتی تھی کہ کہیں یہ میری جان نہ لے لیں، کیونکہ میں حق بات پیش کر دوں گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ میرے دشمن بن جائیں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ دیکھیے، جب آپ اللہ کا دین پیش کرتے ہیں نا، تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس سے لوگ بھی خوش رہیں اور آپ دین کا کام کرتے رہیں، ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگ آپ کی باتوں سے پریشان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے۔ ایسے وقت میں بہت نازک امتحان ہوتا ہے، جو ڈر جائے گا نا وہ اپنے پیغام کو بدل دے گا۔ کام کی ضرورت کیا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہے، اللہ کے دین کو مت بدلیے، اللہ خود ہی بچا لے گا۔ کبھی کسی کی طرف سے کوئی بات آئے تو یہ سوچ لیں کہ بچانے والا جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے والے اور مارنے والے سے زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ ایسی دعائیں ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں پتہ چلتا ہے، یعنی اگر آپ حسن المسلم کتاب کھول کے دیکھیں تو اس میں یہ دعا آپ کو ملتی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی دشمن آپ پہ روب ڈالتا ہے یا اگر آپ کسی دشمن کے روب میں آ جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ پھر اس کی وجہ سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے پکڑے گا، لیکن جب اللہ کے خزانوں پہ نظر ہوتی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر ہماری مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو جائیں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی ہو، جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ محض بے خوف رہے گا اور وہ بالکل بے غم ہو جائے گا۔ یہ تھی آیت نمبر 68 سے 69۔ اس کا عنوان ہے اللہ کے ہاں عمل کی قیمت ہے، نہ کہ آرزوؤں اور تمناؤں کی۔ وہی انداز ہے، پیچھے ان کی خوش فہمیوں کا تذکرہ تھا، عملاً اللہ کے دین پر نہیں تھے، لیکن خوش فہمیوں کے تحت انہوں نے نجات کے کچھ ایسے مفروضے قائم رکھے تھے کہ ہم اپنے بزرگوں سے تعلق قائم کر کے ہی جنت پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی خوش فہمی کو دور کر دیا کہ بات یہ ہے کہ تم جب تک اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرو گے، تب تک تمہاری نجات ممکن نہیں۔ یہی بات کل کے لوگوں کے لیے تھی، یہی بات آج کے لوگوں کے لیے۔ صرف کتاب کو تھام لینے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا، بند کتاب آپ پر ایمان لانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب کتاب کھلتی ہے پھر اس پہ قائم رہنا، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ان مسلمانوں پہ آتی ہے جو کھلی کتاب پر عمل کریں، جو کھلی کتاب کو تھامیں، نہ کہ صرف بند کتاب کو پکڑ کے اس کو ایک برگت کی کتاب سمجھ کے اپنے ہاتھوں سے بہت اونچا رکھ دیں۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، ہم نے بال یقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 سے 71، 70 سے 71، ان کا ٹاپک ہے نفس کے پجاری حق کے دشمن بن گئے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، ابھی تک جتنا قرآن پاک کا آپ نے حصہ پڑھا، آپ کو لگا کہ مسلمانوں کے تذکرے سے زیادہ یہود اور نصارہ کا تذکرہ ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بار بار تقابل، بار بار تقابل، کیا اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راستہ دکھا رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا تم نہ کرنا۔ اصل میں یہاں تک جتنا سلسلہ چل رہا ہے نا آپ کا، یہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس دعا کی قبولیت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کھول کھول کے آپ کو یہود و نصارہ کے نصریات دکھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی جماعتیں تھیں، کوئی برے لوگ نہیں ہیں۔ آج آپ ان لفظوں کو گالی نہ بنائیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، یہ کل کے مسلمان تھے، لیکن آج کے مسلمان کو کل کے مسلمان کی کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے کہ دیکھو کل انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا، اللہ نے ایسے دشمنوں کو بھیجا کہ جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہود کے اندر جب سرکشی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بخت نصر ایک شخص تھا اس کو بلایا، اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم پہ حملہ کیا، ان کے مقدس شہر کو ڈھا دیا، بیت المقدس تک ڈھایا گیا، और गिरफ्तार करके यहूद को ले गए, इनको बेगार ली। फिर इस दौरान इनके दिल नरम हुए, इनको लगा हम पे क्या हो गया, हम तो अल्लाह के चुने हुए लोग थे, दुश्मन हम पे गालिब हुए। इन्होंने माफिया मांगी। ईरान का एक बादशाह था साइरस, जिसको बोलते हैं, उसने इनकी मदद की और लिहाजा इनके अंदर एक नया जोश आया, इन्होंने फतह हासिल की, वापस अपने वतन चले गए। थोड़े दिन अल्लाह ने इनको जरा फिर गलबा दिया अपने दीन पे अमल करने का। जो ही अच्छे दिन आते हैं तो फिर आंखें पलटने लगती हैं, दोबारा पलटे। अल्लाह ने इस दौरान इनके अंदर नबी भेजे, पैगंबर भेजे, लेकिन वही बात हुई कि उसके बाद इन्होंने हजरत यहया अलैहिस्सलाम और जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की जब कोशिश की, दोबारा अल्लाह ताला ने रोमन बादशाह टीटस जो था उसको भेजा, इसने फिर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। ये कल के दौर थे, कल के नाम है। आज भी यही कहानी है, जब मुसलमान कौम अपनी किताब से दूर होती है, अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों को उनपे भेजता है, जाके पकड़ो। और जब ये लोगों का हाल हो जाता है ना कि वो खुद पसंद और ये सोचें कि वी आर चोजन पीपल, तो होता क्या है कि वो दीन के अहकाम के बारे में अंधे बहरे बन जाते हैं। उनको इसकी केयर ही नहीं रहती कि अल्लाह क्या चाहता है। वो बिल्कुल कुरान पढ़ते हैं, झूम झूम के पढ़ते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। कुरान बाज दफा कुछ बातें कह रहा होता है और उस पर उनका अमल ही नहीं होता, और वो खुद कुरान की जुबान से एक किस्म की लानत पा रहे होते हैं। तो लिहाजा असल बात यह है कि सम्मू व अम्मू, देखिए ये दो लफ्ज अगर इस हिस्से में से हाईलाइट कर लीजिए, हसीबु अल्लाह तकून फितनतुन फअमू व सम्मू। आप इसकी तफसीर अहसनुल बयान से भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब कोई कौम अपने दीन से अंधी बहरी हो जाती है, तो फिर अल्लाह दुश्मनों को भेजता है, वो उनकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। और ये अंधा और बहरापन कैसे खत्म होगा, जब अपनी किताब को अपनी जुबान में समझेंगे। लकत कफरल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने इनसे कहा था कि ऐ बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका रब है। यकीन मानो जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नम ही है, और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई न होगा। वो लोग भी कतन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से तीसरा है, दरअसल सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बास न रहे तो इनमें जो कुफर पर रहे इन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तगफार नहीं करते, अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। मसीह ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं, इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालदा एक सच्ची खातून थी, दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे। आप देखिए किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए किस तरह वो फिरे जाते हैं। आप कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के सिवाय इनकी इबादत करते हो, जो ना तुम्हारे किसी नफे के मालिक है ना नुकसान के। अल्लाह ही खूब सुनने वाला और जानने वाला है। ये थी आयत नंबर 72 से 76, 72 से 76। इनका उन्वान है ईसा की ज़ात के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इतमाम हुज्जत के लिए पैदा किया था। असल में ये बनी इसराइल के खात्मे का ऐलान था। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से आने वाले थे, लेकिन इनकी खिलाफ मामूल जो पैदाइश थी उसकी बुनियाद पे बनी इसराइल कई टुकड़ों में बट गए। किसी ने ईसा को खुदा कहा, किसी ने ईसा को खुदा का बेटा कहा, किसी ने तीन को खुदा कहा, कहीं किसी ने मरियम को शामिल किया, किसी ने जिब्राइल को शामिल किया। अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को बुनियाद बना के आज के मुसलमानों को ये खबर देते हैं कि जब कोई शख्स अपनी मोहब्बत के किबलों को बदल लेगा, अल्लाह की जात की बजाय किसी और को इतना मुकाम दे दे कि उसको वो इंसानियत के मुकाम से उठा के खुदाई के मुकाम पे डाल दे, और झूठी उम्मीदें रखे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। और ऐसे लोग जब मौत के दरवाजे से गुजरेंगे तो हकीकत उनके सामने खड़ी होगी कि हमने क्या खोया और क्या पाया। कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, कह दीजिए अहले किताब अपने दीन में नाहक गलूफ और ज्यादती न करो, और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुत सारों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से भटक गए। ये थी आयत नंबर 77। इसका उनवान लिखिएगा गुमराही की वजह, फिर स्लैश डालेंगे आप, गुम करके फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, गुम राहों के पीछे चलना। ये जो लफ्ज हम बोलते हैं ना गुमराह, असल में ये क्या है, गुम राह, जिसने राह गुम कर दी। तसव्वुर में आ रही बात, राह गुम किए हुओं के पीछे चलना, ये है गुमराही। आज मुसलमान ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो खुद ही रास्ते गुम कर बैठे हैं, कि जिन्होंने एक खुदा की बजाय तीन खुदाओं या दो खुदाओं का नजरिया डाल दिया। इसी तरह क्रिश्चियंस जो है उनके अंदर भी गुमराही आई। शायद कभी आप इस बात पे सोचते होंगे कि वो दीन जिसकी बुनियाद ईसा अलैहिस्सलाम के इस कलाम पे उठी थी कि इन्नी अब्दुल्ला, हजरत ईसा ने माँ की गोद से निकलने के बाद जो पहला कलाम किया था सूरह मरियम में हम पढ़ेंगे, वो क्या था, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब अवल हिकमा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप सोचिए वो एक से उठ के तीन कैसे हो गए। आपके जहन में ये सवाल तब उठता है जब आप थोड़ा सा दीन की बात समझने लगते हैं। तो यहाँ जहन में रख लीजिएगा कि जिस तरह आज हम मुसलमान यहूद और नसारा को फॉलो करके अपने दीन से दूर हो रहे हैं ना, इसी तरह अपने दौर के क्रिश्चियंस के अंदर जो खराबी आई थी वो यूनानियों से आई थी। ग्रीक मैथोलॉजी का नाम आपने सुना होगा। ग्रीक्स जो होते थे ना वो आइडल वर्शिपर्स थे। उनके दीन के अंदर तीन खुदाओं का तसव्वुर था कि ट्रिनिटी फैली कैसे। ये ग्रीक से इतने इंप्रेस थे क्रिश्चियंस के, इन्होंने उससे फिर पहले दो खुदा बनाए फिर तीन बनाए और उसी को फॉलो करके आज देखिए कैसे लगता है कि जैसे क्रिश्चियनिटी है ही तीन खुदाओं का नाम। तो होता यही है कि जब कोई कौम गुमराहों के पीछे चलती है, जो लॉस्ट पीपल होते हैं, फिर वो खुद भी लॉस्ट होती है। इसको प्रैक्टिकली भी आप समझें कि आपको यहां से निकल के हो सकता है कि किसी मस्जिद में जाना हो, आप में से एक साहिबा उठे और कहें कि मुझे यकीन है कि वो जगह किधर है, और हम सारे उनके पीछे गाड़ियां डाल दें। सर आप सोचिए, बिल फर्ज अगर वो रास्ता भूल जाए तो हम सब कहाँ जाएंगे। हाल तो यही है ना, हम जब किसी राह भूले हुए के पीछे जाते हैं तो हम भी राह भूलते हैं, और अगर हम में से कोई साहिबे समझ हो तो वो कहेगा नहीं आपको पता है, पहले ये बताएं जाना किधर है। हो सकता है आप ना रास्ता भूलें, आप सिर्फ एक ट्रैफिक लाइट पे हमसे अलग हो जाएं और हम पता नहीं सारे बिखर जाए, अच्छा इधर गई होंगी, इधर गई होंगी, इधर गई होंगी। इसी तरह दीन में गुमराहियां आती हैं। नतीजा के हर बंदा पहले डायरेक्शन ले फिर निकले, साथ चले लेकिन डायरेक्शन लेके चले, और डायरेक्शन किधर है? जालिकल किताब ला रैब फी। अल्लाह इससे जोड़ दे हम सबको। लुइन अल्लज़ीन कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्ने मरियम। बनी इसराइल के काफिरों पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम की जुबानी लानत की गई, इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे, आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते न थे। जो कुछ भी ये करते थे यकीनन ये बहुत बुरा था। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि काफिरों से दोस्तियां करते हैं, जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है ये बहुत बुरा है कि अल्लाह ताला इनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। वलौ कानू यूमिनून बिल्लाहि वन्नबी, अगर इन्हें अल्लाह पर और नबी पर और जो नाजिल किया गया इस पर ईमान होता तो ये कुफार से दोस्तियां ना करते, लेकिन इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। आयत नंबर 78 से 81, इनका उनवान है बेजरर एहकाम पर अमल करना आसान है। बेसिकली इन आयात में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हकीकत बता दी, और वो क्या कि जब इंसान के दिल में ईमान आता है ना तो वो जुल्म और बुराई के बारे में बहुत सेंसिटिव हो जाता है ना, वो किसी जगह जुल्म होता बर्दाश्त कर सकता है और ना बुराई देख के बर्दाश्त करता है, वो तड़पने लगता है। और बुरे लोगों के साथ फिर इसका ताल्लुक जो है वो जुदाई का बन जाता है ना कि दोस्ती का। लेकिन जब इंसान के अंदर ईमान कमजोर होता है ना तो अपनी जात के बारे में तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसको हर वो बुराई बुरी लगती है जो उसकी जात में हो, जिसकी जात उसके ऊपर पड़े, और जिस बुराई का रुख दूसरों की तरफ होता है इसके बारे में वो गैर जानिबदार होता है और क्या कहता है, नहीं नहीं डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखो, मैं क्यों बुरी बनूं, क्या लोगों को नहीं पता, खुद ही पढ़ लेंगे। आज कितनी दफा दिन में हम ये कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखते हैं, गलत काम करते देख के हम क्यों नहीं टोकते, खानदान का मसला है, रिश्तेदारी टूटेगी, दोस्ती खराब होगी, चलो अपनी जान को बचा लो। ये थी वो खराबी जिसका शिकार बनी इसराइल के उलमा हुए। आज देखिए बनी इसराइल के हाथ से इमामत आज हमारे हाथ में क्यों आ गई, क्योंकि वो लोगों को बुराइयां करते हुए देखकर रोकते नहीं थे। अल्लाह ने हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से इन पर लानत करवाई। इनकी लानत के क्या इजहार के तरीके थे कि इनके आलिम जो इतनी बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ते थे, मैं एक कोटेशन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी, तौरात के अंदर बाब मती है उसकी आयत 23 में, हजरत मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दौर के यहूदियों के बारे में कहा, ए रियाकार फकीहो, तुम पर अफसोस, तुम बेवाओं के घरों को तो दबा बैठे हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम सौंफ और जीरे के बारे में तो तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो जबकि तुमने शरीयत की भारी बातों पर यानी इंसाफ रहम और ईमान को छोड़ दिया, यानी छोटी छोटी बातों को इतनी तनकीद करते और बड़े बड़े कामों को छोड़ दिया है। ए अंधे राह बताने वालों, मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो, ए रियाकार फकी हो, तुम जाहिर में तो लोगों को रास बात दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकार और बेदीनी से भरे हुए हो। इनकी किताब की कोटेशन है। इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मुझे तो लगता है कि तुम में कोई नेकोकार नहीं। इसमें असल बात वही है कि वो दीनदार जो लंबी नमाजें तो पढ़े, वो जकात पे लंबी लंबी बातें करें, वो दाढ़ी को नाप नाप के गिने, वो पर्दे की बातें खूब करें, लेकिन लोगों के साथ उनकी बुराइयों पर और उनके जो मामला जिंदगी गुजारने के उस पर बात ना करें, तैसे लोग जो है फिर वो अल्लाह की नजर में दीनदार नहीं। इन तमाम लोगों का तस्करा करने के बाद अल्लाह ताला आखिर में एक इंसाफ की बात करते हैं, और वो क्या, इस आयत जो भी पढ़ूंगी इसके साथ अगले पारे की दो तीन आयतें होंगी क्योंकि इन दोनों का टॉपिक एक है। लतजिदन्ना शद्दन्नास यदावत लिल्लजीना आमनुल यहूद वल्लजीना अशरकू, यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएंगे और ईमान वालों में से सबसे ज्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन उनको पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, इसलिए कि इनमें उलमा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं और इस वजह से कि ये तकबर नहीं करते। वैजा समी उमा उन रसूली तरह युनहुम तफीदु मिन दम्मी मिम्मा रफू मिन अलहक, और जब वो रसूल की तरफ से नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं इस सबब से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। वो कहते हैं हमारे रब हम ईमान ले आए, बस तो हमको भी इन लोगों के साथ लिख दे जो तस्दीक करते हैं। वमा लना ला नूमिनु बिल्ला, और हमारे पास कौन सा ऐसा उजर है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हमको पहुंचा है इस पर ईमान न लाए, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफाकत में दाखिल कर देगा। फसाबहुमुल्लाहु बिमा कालू, इसलिए इनको अल्लाह ताला इनके इस कौल की वजह से ऐसे बाग देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और जो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है। और इसके बरक्स वल्लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाते रहे वो लोग दोज़ख वाले हैं। ये थी आयत नंबर 82 से 86, 82 से 86। इसको अनवान लिखिए, वो एक कॉल नहीं था बल्कि उनकी हस्ती का नुमाइंदा था। बात थोड़ी मुश्किल है, इंशाल्लाह ताला इसकी जब तफसीर हम देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगला पारा इंशाल्लाह इन्हीं आयतों की तफसीर से शुरू करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।